लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव में धूर्तता कहाँ से आती है? हम क्यों किसी को लंघी मारने की कोशिश करते हैं? हम क्यों किसी की बुराई करने और किसी को हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं? हमें क्यों दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष और जलन होती है? श्रोताओ, यह मानव के हृदय से निकलने वाली दुर्भावनाएं हैं। यह हम में व्याप्त कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। लेकिन एक बात जिसे हमें अपने में विचार करने की जरूरत है कि क्या कोई मानव इन सारे कमजोरियों के गठरी के साथ इस दुनिया में जन्म लेता है, या वह अपने जीवन में विकास करने के दौरान इन सारी बुराइयों को अपने में धारण करने लगता है। 29वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ में हम यीशु के प्रति फरिसियों और शास्त्रियों के मन में व्याप्त एक तरह की धूर्तता को पाते हैं, जिसके कारण वे यीशु के विरुद्ध एक चाल चलते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। आइए हम सुसमाचार पाठ में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपनी अंतर आत्मा की परख करें कि हमारा व्यक्तिगत व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति कैसा है। क्या हम अपने में उनके प्रति व्याप्त ईर्ष्या और जलन के कारण उन्हें नीचा दिखाना चाहते और उन्हें किसी रूप में फंसाने की कोशिश करते हैं? हम दूसरों के साथ पेश आने में अपने को किस तरह प्रस्तुत करते हैं? दूसरों के प्रति हमारे विचार और मनोभाव क्या हैं?
उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। उन्होंने हेरोदियों के पास अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने ईसा के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते, इसलिए हमें बताइए आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, ढोंगियो, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने विचारों और भावनाओं को परिशुद्ध करने की कृपा दे, जिससे हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सदा अच्छे विचार और सोच रख सकें, जो हमारे जीवन के सकारात्मक पक्षों और हमारे अच्छे गुणों को दूसरों के लिए प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा जीवन देने वाले ईश्वर के नाम की महिमा होती है।
महिमा तेरी गाता रहूं मैं सदा, सर्वदा तेरा ही यश मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं।
श्रोताओ, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ यहवे द्वारा राजा सीरुस को अपनी प्रजा की देख रेख हेतु अभिषिक्त करने की बात कहता है। ईश्वर उनके लिए बहुत सारे कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे कि राष्ट्रों को सीरुस के अधीन करना, राजाओं के शस्त्र को उनके लिए, सारे बंद फाटकों को तोड़ दिया जाना। यहवे की प्रतिज्ञा उनके लिए यह भी होती है कि वे उनके आगे आगे चलते हुए उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल करेंगे, कांसे के फाटक को उनके लिए तोड़ डालेंगे, अंधकार और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति उनके हाथों में दे देंगे, जिससे वे यह जान सकें कि ये सारे कार्य करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जो उन्हें अपने कार्यों को करने हेतु नाम लेकर बुलाते हैं। श्रोताओ, यहवे अपनी प्रजा की देख रेख करने हेतु सीरुस को अपने इन सारे वरदानों से विभूषित करते हैं, यद्यपि वे उनके नाम से अपरिचित हैं। पहले पाठ के प्रकाश में यदि हम अपने जीवन पर चिंतन करें तो ईश्वर हमें भी नाम लेकर अपने कार्यों को करने हेतु बुलाते हैं। वे हमें असंख्य वरदानों से भर देते जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे हमारे जीवन के दुख और परेशानियों से भरे उबड़ खाबड़ मार्गों को समतल कर देते हैं, जिससे हम बिना विचलित हुए उनकी राहों में आगे बढ़ सकें। ऐसा करने के पीछे ईश्वर की मंशा केवल यही है कि हम उन्हें अपना प्रभु और सच्चा स्वामी माने, जो एकमात्र सच्चे ईश्वर हैं, जिनके समान और कोई दूसरा नहीं है। हम केवल उनके नाम की महिमा और उनकी सेवा पूजा करते हुए उन्हें उन चीजों को अर्पित करें जो उनके लिए उचित है। श्रोताओ, ईश्वर के लिए क्या उचित और आवश्यक है, उसे संत पौलुस द्वारा थिसलनीकियों को लिखा गया पत्र हमारे लिए आज के दूसरे पाठ में व्यक्त करता है। संत पौलुस थिसलनीकी कलीसिया के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते और उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। वे उन्हें इस बात की याद दिलाते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रेम करते हैं और प्रेम किए जाने के कारण उन्हें पवित्र आत्मा में इसलिए चुनते हैं कि वे ईश्वर के सुसमाचार को अपने जीवन के द्वारा प्रसारित कर सकें। यह हमारे लिए पुनः ईश्वर के प्रेम को व्यक्त करता है। ईश्वर ने हमें अपने लिए चुना है और हमारे द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। अतः हम ईश्वर से मिले अपने जीवन के उपहारों और अपने सभी वरदानों के लिए उन्हें सिर्फ प्रार्थना करते हुए धन्यवाद अदा कर सकते हैं, जो हमारे लिए उचित और आवश्यक है। श्रोताओ, आज का सुसमाचार हमें अपने जीवन में अपने धूर्तता भरी चाल का परित्याग कर एक अच्छा और उचित जीवन व्यतीत करने का संदेश देता है। हमारी धूर्तता हमारी चालाकी रूपी व्यवहार में प्रकट होती है, जहां हम अपने को अधिक होशियार साबित करने का बहुधा प्रयास करते हैं। अपने इस मनोभाव के कारण हम बहुत बार इस तरह का आचरण करते जो हमारे लिए हानि का कारण बनती है। यीशु ख्रिस्त आज हमें अपनी चालबाजी से बाज आने को कहते और जो उचित है उसे निष्ठा में पूरा करने को कहते हैं। श्रोताओ, अपनी चालबाजी और धूर्तता में हम दुनिया के नियम कानूनों से बचकर निकल सकते हैं। हम दूसरों की नजरों में धूल झोंक सकते और अपने में वाह वाही लूट सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे मन और हृदय के विचारों और मनोभावों से अवगत हैं। इसके पहले कि हम अपने चतुराई पूर्ण कार्यों को अंजाम दें, वे हमारी सभी बातों और कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अतः हम उन्हें किसी भी रूप में लंघे नहीं मार सकते हैं। जो कैसर अर्थात समाज का है, हम उसे समाज को कर स्वरूप देते हैं, लेकिन ईश्वर को देने का अर्थ हमारे लिए यही है कि हम अपना शुद्ध मन और हृदय उन्हें अर्पित करें, क्योंकि हमारा मन और दिल ईश्वर का है, जहां वे निवास करते हैं। श्रोताओं, हम अपने जीवन के सभी कार्यों को छल कपट और अपनी प्रसिद्धि हेतु नहीं, वरन ईश्वर के लिए नेक और अच्छे विचारों से करने हेतु बुलाए गए हैं। अपने नाम की महिमा खोजे बिना जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को दूसरों के लिए करते, तो हम अपना हृदय और अपना मन जीवन दाता ईश्वर को देते हैं। आइए हम ईश माता मरियम से निवेदन करें कि जो ईश्वर का है वे हमें उसे ईश्वर को देने की शिक्षा दें।
जीवन जिसने दिया, ये जीवन है उसका। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। वो जीवन दे
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 17 अक्टूबर को संत पेत्रुस कंपनी के पुलिस बल से मुलाकात की तथा उन्हें उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इटाली एवं वैटिकन सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करते हुए परमधाम पीठ को सेवा देने एवं सार्वजनिक सुव्यवस्था लाने के लिए वैटिकन के चारों ओर आपका सराहने कार्य कार्यक्रमों को शांति से चलाने में मदद देता है, जो विश्व भर के तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों को सालों भर आकर्षित करता है। इसके लिए एक ओर प्रावधानों को लागू करने तथा दूसरी ओर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए धैर्यपूर्ण तत्परता की आवश्यकता होती है। संत पापा ने कहा कि व्यावसायिकता एवं जिम्मेदारी की भावना जिसको वे इस क्षेत्र में प्रकट करते हैं, वह सामाजिक समुदाय में एकात्मकता की भावना को व्यक्त करता एवं सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा, आप अपने कार्यों में शहर के दूसरे क्षेत्रों के समान वैटिकन में दुर्बलों एवं वंचित लोगों, खासकर बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने के लिए बुलाए गए हैं। यह विश्वास पर आधारित संबंध एवं सार्वजनिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा आसान होता है। यह संबंध सुरक्षा बल एवं लोगों के बीच स्थापित होता है। संत पापा ने सुरक्षा बल के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उन छोटे किंतु महत्वपूर्ण दैनिक सेवा कार्यों जिनको अधिकारी भले ही ना देख पाते हों, किंतु ईश्वर जानते और उन्हें नहीं भूलते हैं। संत पापा ने कहा कि सुरक्षा बल के कार्य पड़ोसियों के प्रति समर्पण में व्यक्त होते हैं। इसके लिए निरंतर तत्परता, विवेक, त्याग और कर्तव्य की भावना की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं आपको हर जगह जिम्मेदार नागरिकता के प्रवर्तक होने, लोगों की सुरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से जीवन के अधिकार के संरक्षक बनने का प्रोत्साहन देता हूं। अपने व्यवसाय को पूरा करते हुए आप सदा सचेत रहें कि हर व्यक्ति ईश्वर के लिए प्यारा है, उसकी सृष्टि है और जिसके कारण वह सम्मान के योग्य है। संत पापा ने उनके लिए प्रार्थना की कि वे प्रभु की कृपा से अपने कार्यों को ध्यान एवं समर्पण के साथ कर सकें। कलीसिया 18 अक्टूबर को जब 94वां विश्व मिशन दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार के लिए गठित धम्म संघ तथा परम धम्म पीठ मिशन सोसाइटी ने विश्व में कलीसिया के मिशन कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। परंपरागत रूप से अक्टूबर माह के अंतिम से पहले सप्ताह को मनाए जाने वाले विश्व मिशन रविवार को इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व मिशन रविवार का उद्देश्य है मिशन के लिए प्रार्थना, सहयोग और मदद देने का प्रोत्साहन।
यह ख्रिस्टियों को कलीसिया एवं हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति के मूल मिशनरी चरित्र की याद दिलाता है। इस साल के समारोह के पहले लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परम धम पीठे धम संघ एवं विश्वास के प्रचार हेतु परम धम पीठे मिशन सोसाइटी ने शुक्रवार को वैटिकन में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार के लिए गठित परम धम पीठे समिति के सचिव महाधव मदश प्रोतासी ने विश्व मिशन दिवस के लिए संत पापा के संदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा, आज हम विश्व मिशन दिवस के लिए संत पापा फ्रांसिस के संदेश को प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज। उन्होंने कहा, संदेश के केंद्र में है कि मिशन किस तरह हम प्रत्येक को चुनौती देता है, हमारी बुलाहट में व्यक्तिगत रूप से और आज की दुनिया में कलीसिया के सदस्य के रूप में। रांची के महाधर्म अध्यक्ष फेलिक्स डोप्पो ने 16 अक्टूबर को पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के साथ रांची में 5 किलोमीटर तक फैले एक मानव श्रृंखला में भाग लेकर 83 साल के बुजुर्ग जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की कथित माओवादी लिंक के आरोप में गिरफ्तारी का विरोध किया।
संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में शनिवार 17 अक्टूबर को वाटिकन में ग्रीस के नए राजदूत श्री पानोस कारुगेलुस पाउलुस से मुलाकात की और उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्री पानोस का जन्म 1956 में एथेंस में हुआ था। उनकी शादी नहीं हुई है और वे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चिय हैं। उन्होंने एथेंस के नेशनल एंड कोपर यूनिवर्सिटी में कानून और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है। उन्होंने 1982 में राजनयिक सेवा में प्रवेश किया और दक्षिण पूर्व यूरोप के देशों के लिए बने विभाग के विदेश मंत्रालय में काम किया और रूस, यूक्रेन, मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ साथ विदेशी संबंधों और यूरोपीय संघ विस्तार विभाग के अध्यक्ष थे। वे रूस, लेबनान, जर्मनी और भारत के राजदूत रह चुके हैं। श्री पानोस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, इतालवी और पुर्तगाली भाषाएं बोलते हैं। उधर वेनेजुएला में फैली सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट के खिलाफ प्रदर्शनों में देश के धर्माध्यक्षों ने आर्थिक और राजनैतिक संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार की अक्षमता की निंदा की है। वेनेजुएला के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में विरोध प्रदर्शनों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। गुरुवार को जारी एक प्रेरितिक पत्र में धर्माध्यक्षों ने कहा कि प्रदर्शनकारी अपने शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट और पुरानी ईंधन की कमी के खिलाफ ग्रामीण कस्बे उराकीके में सितंबर के अंत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बुनियादी सेवाओं और खाद्य आपूर्ति न मिलने के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। एक सप्ताह के भीतर आंदोलन वेनेजुएला के अन्य हिस्सों में फैल गया। निकोलस मादुरी की सरकार ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का उपयोग करते हुए प्रदर्शनों को तोड़ने की कोशिश की। वेनेजुएला के धर्माध्यक्षों का सम्मेलन 13 से 15 अक्टूबर तक था। इस सम्मेलन में धर्माध्यक्षों ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि विरोध आंदोलन स्थानीय और स्वाभाविक तरीके से उभरा था। वेनेजुएला के लोग अपने सही बुनियादी दावों का जवाब नहीं पाने के कारण थक गए थे और बार बार किए गए वादों और प्रस्तावों से ठगा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी संगठन ने देश की गंभीर समस्याओं के समाधान खोजने में असमर्थता का प्रदर्शन किया है और उनके कार्य बदतर होते जा रहे हैं। धर्माध्यक्षों ने विपक्षी दलों को भी फटकारा जो कि विभाजित है। दोनों पक्षों ने एक राष्ट्रीय परियोजना पेश की है जो वेनेजुएला के अधिकांश लोगों को एकजुट होकर न्याय, स्वतंत्रता और शांति में जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।